हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। और आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। अब मैं इसमें अपने पर्सनल ओपिनियन और व्यूज़ शेयर करूंगा। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं कोई पॉलिसी पे कमेंट कर रहा हूँ या दूसरे लोगों के ओपिनियंस इससे रिलेट करने ज़रूरी हैं। आप में से कई लोगों को होगा कि यार ये तो फाइनेंस का चैनल है, तुम इसकी क्यों बात कर रहे हो। बट आपको ये देखना ज़रूरी है कि प्राइमरीली द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है मेरा। एंड अगर एक ग्राउंड लेवल पे स्कूलिंग सिस्टम के अंदर एंड आगे जाके कॉलेज सिस्टम में भी एजुकेशन में चेंज आ रहा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे अपने ओपिनियन यहाँ पे देने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा बता दूँ। तो मैं हमेशा से स्ट्रेट ए स्टूडेंट रहा हूँ। मेरे बोर्ड्स में भी बेस्ट 4 में 95 थे। ग्रेजुएशन भी जो मैंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर से करी बीबी ऑनर्स, उसके अंदर भी मेरे 85 थे। एंड मतलब मेरे को शुरू से एकेडमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगे, मेरे को कभी भी पढ़ाई बोझा नहीं लगी एंड आई हैव ऑलवेज बीन गुड एट एकेडमिक्स। मैंने हमेशा एक्सेल किया एकेडमिक्स में, तो एकेडमिक्स इज समथिंग दैट हैज़ कम नेचुरली टू मी। तो इसके अंदर अगर कोई चेंज हो रहा है और पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो वो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो द थिंग इज कि मेरे को, क्योंकि लेट्स से कि अब ऑब्वियसली आपको लोग इतने ज़्यादा नहीं मिलते होंगे जिनको पढ़ना इतना पसंद होगा, बट मुझे पढ़ना बहुत पसंद है एंड वो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि हमारी रिसर्च में भी रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे। तो खैर, मुझे पढ़ना क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद है तो मुझे हमेशा से था कि मैं अपने पसंद के सब्जेक्ट्स पढ़ पाऊँ। बट क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत रिजिड था तो मेरे को हमेशा, जैसे मैंने कॉमर्स ली 11th 12th में, मैं उसके साथ अपने पसंद के सब्जेक्ट्स नहीं ले पाया। मुझे फिजिक्स बहुत ज़्यादा पसंद थी शुरू से ही। एंड आप देखेंगे कि मतलब मेरे को क्या करना पड़ा व्हेन आई केम इन कॉलेज, क्योंकि 11th 12th में तो बोर्ड क्लासेज हैं, उस पर फोकस करना है, ये वो ट्यूशंस चल रही होती हैं। तो व्हेन आई केम इन कॉलेज तब मुझे पता चला कि edx.org हो गया, coursera.org हो गया, उनसे आप कोर्सेज सीख सकते हैं, अपनी मर्जी के कोर्सेज ले सकते हैं। देन आई एनरोल्ड इन अ लॉट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कोर्स और उसके बेसिस में मैंने क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, जो बिग बैंग थ्योरी हो गई, यूनिवर्स कैसे बना, आपके जो यू नो पार्टिकल्स कैसे वर्क करते हैं, क्वांटम एंटैंगलमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत सारी पढ़ी। एंड हार्वर्ड एक्स से मेरे पास एक सर्टिफिकेट भी है और भी 3-4 यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट्स हैं, बट वो मेरे को ध्यान नहीं। हार्वर्ड क्योंकि एक बड़ी यूनिवर्सिटी है तो उसका थोड़ा याद रहता है कि हाँ आपके पास एक हार्वर्ड से सर्टिफिकेट है। तो अब जो पॉलिसी में चेंज आ रहा है वो ऑब्वियसली इन्होंने किया 5+3+3+4 किया है। ऑब्वियसली जो 5 जो इनिशियल है उसके अंदर 3 साल तो आपके जैसे KG प्रेप वगैरह के होते हैं वो हैं। तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है। मुझे एक जो बहुत अच्छी चीज़ लगी कि कह रहे हैं क्लास 6 से आप कोडिंग कर सकते हैं, आपको कोडिंग सिखाई जाएगी, आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर फोकस होगा। एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, अगेन जैसे मैंने सब्जेक्ट्स की यहाँ पे बात करी कि पसंद के सब्जेक्ट्स आप चुन सकते हैं क्लास 9 से 12 के अंदर एंड उनके अंदर आप स्पेशलाइजेशन करें। आपको बेकरी कन्फेक्शनरी पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, आपको फिजिक्स पढ़नी है, ऐसे मेरे को पढ़नी थी कॉमर्स के बाद फिजिक्स, आप वो पढ़ सकते हैं। आपको जो सब्जेक्ट्स लेने हैं हो सकता है कि उनका एक पूल डिसाइड करें ये लोग, बट फिर भी आपको एक यू नो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। एंड वेरी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ह्यूमैनिटीज़ एज अ स्ट्रीम वॉज बेसिकली वेस्ट ऑफ टाइम। हो सकता है लोगों को इसके अंदर एग्री वो ना करें, बट आप देखो कि ह्यूमैनिटी से मोस्टली लोग लॉ के अंदर या फिर हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स, ये सब कर रहे थे। तो अगर उनको पढ़ना ही एक सब्जेक्ट है तो अगर आप उस पर ही फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाता है बच्चों के लिए। लेट्स से कि आज मैं 4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ, उनमें से मुझे पता लगे कि नहीं एक ही सब्जेक्ट काम आना है, तो बेसिकली बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। एंड ये सब चीज़ें ना पहले होती थी कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, अब वो नहीं चलता। यू नीड टू बी स्पेशलाइज्ड इन वन पर्टिकुलर थिंग एंड उसके अंदर अगर आप अपना नीश क्रिएट करते हैं, उसके अंदर आप बेटर हैं बाकी लोगों से, तो आप देखेंगे आप लाइफ में काफ़ी आगे जा सकते हैं। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बेसिस पे मुझे लग रहा है ये पॉसिबल होगा। प्लस एक जो मुझे बहुत बड़ी कमी लगती थी कि हमें प्रोग्रामिंग कोडिंग नहीं सिखाई गई, डिजिटल वर्ल्ड है, आप सोशल मीडिया को अपने बिजनेसेस प्रमोट करने के लिए यूज़ नहीं कर पाते। मतलब बहुत लोग कैमरा ही नहीं डिसाइड कर पाते कौन सा खरीदने, जबकि आजकल के कैमराज इतने अच्छे हो गए हैं, उनको प्रोसेसर नहीं पता क्या है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हो सकता है आपका इंटरेस्ट ना हो तो, लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं इनके बारे में एक बार बताया जाएगा, टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कहीं ना कहीं बताया जाएगा, आपको कोडिंग सिखाई जाएगी, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो फिर आप बहुत ढंग से इसके अंदर अपनी स्किल्स को ग्रैस्प कर सकते हैं और उसको एडवांस लेवल पे ले जा सकते हैं। अभी होता है कि आपको प्रॉपरली कोडिंग सीखनी है तो जैसे मैंने किया था, मैंने कॉलेज डेज में ज्वाइन करा था, NIIT ज्वाइन किया था, अब कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे, एंड देन मैंने कुछ वो उधर कोचिंग वगैरह ली, आई लर्न C++, C प्रोग्रामिंग एंड देन आई रियलाइज कि प्रोग्रामिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। एंड मेरा बहुत ही बेसिकली सिंपल फंडा रहता है लाइफ में, आप चीज़ें सारी ट्राई करें जो आपको पसंद आ रही हैं, एंड अल्टीमेटली जिसके अंदर भी आपका मन लगता है, आपको लगता है कि हाँ इसके अंदर मैं बाकियों से थोड़ा सा बेटर हूँ, आई एम जस्ट स्लाइटली अबव एवरेज, तो उसके अंदर आप अगर वर्कआउट करेंगे अपना वे तो बहुत ढंग से इसको आप प्रमोट कर सकते हैं। एंड आप देखिए जैसे मेरे में पेशेंस बहुत ज़्यादा है, तो आई रियलाइज कि पेशेंस इज़ माई प्लस पॉइंट। अब पेशेंस लाइफ में इन जनरल हर जगह पर चाहिए, बट इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अगर आप पेशेंस ले आते हैं तो आप 90-95% लोगों से बेटर परफॉर्म करने लगते हैं स्टॉक मार्केट में। तो पेशेंस आने के वजह से एक, या वो पेशेंस जो मेरी एक स्किल है मैं कहूँगा, जो मैंने डेवलप किया है स्किल सेट अपना ओवर द पीरियड, तो उसके वजह से मेरे को कहीं ना कहीं पे एक बेनिफिट होता है जब मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ। तो अगेन गाइज, अगर आपको इतना ज़्यादा यू नो एक्सपोजर दिया जाएगा शुरू की एज में ही, आपको सिर्फ एजुकेशन पे नहीं आपकी मेंटल हेल्थ पे फोकस किया जाएगा, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स पे फोकस किया जाएगा। क्योंकि होता क्या है, बहुत लोग ना इस चीज़ को नहीं समझते, तो यू हैव टू लिव लाइफ थ्रू योर 80s मान के चलिए, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, हो सकता है 60s-70s, बट 80s हम मान के चलते हैं एक बार अगर, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहे हैं, लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा है, सब कुछ। लोग क्या करते हैं, अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं स्टार्टिंग की एज में, एंड दे आर यू नो रियली इनटू देयर कॉर्पोरेट जॉब्स, बहुत ज़्यादा पुश कर रहे होते हैं, एंड कई सारी डिजीजेज़ उन्हें हो जाती है 40 की एज तक आपको डिजीजेज़ हो गई। मैं कह रहा हूँ हमने बहुत अच्छे से कमा भी लिया, यू स्टिल हैव हाफ ऑफ योर लाइफ टू लिव। एंड ऐसा नहीं है कि आज 60 साल या 70 ईयर्स 60-70 साल की उम्र में आपके हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं। जब तक हाथ पैर चलते हैं इंसान को रहता ही है कि मैं सारे काम अपने खुद करूं, कोई नई नई चीज़ें करूं, कुछ नया एक्सप्लोर करूं। आपने कितने लोगों की कहानी सुनी है जिन्होंने बाद में जाके एक बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स खड़े करें। तो हेल्थ पे कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इंडिया जैसी कंट्री में स्पेशली न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है, स्पोर्ट्स की नॉलेज नहीं है, आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ को लेके कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। बट अगर इन चीज़ों पे अब ध्यान दिया जाएगा तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। एंड यहाँ पे दिक्कत एक बहुत बड़ी ये भी है कि सबको एम्प्लॉई बनाना सिखाया जाता है, स्कूलिंग सिस्टम हो, कॉलेज सिस्टम हो, एम्प्लॉयर बनाने की कोई बात ही नहीं करता है। अगर आपको बिजनेस खड़ा करना है आपको सारी स्ट्रगल खुद करनी पड़ती है, आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। अब आप देखिए कि मैं जैसे कॉलेज वॉलेज में पढ़ा, हमें कभी भी कोई ऐसा नहीं था कि सोशल मीडिया की क्लासेस हो रही हैं वहाँ पे, या सोशल मीडिया पे आप ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं अपनी, या फिर आप यूट्यूब चैनल कैसे चलाएं, इन सब चीज़ों में इन डिटेल कोई डिस्कशन नहीं होता। एंड बहुत फालतू का सिलेबस पढ़ाते हैं और लगातार पढ़ाते ही रहते हैं। एंड मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं इसकी इंप्लीमेंटेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत, अब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा यहाँ पे, बट सबसे ज़्यादा दिक्कत टीचर्स को आएगी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर बहुत टाइम से चल रहे हैं, राइट? क्योंकि बच्चा नया आएगा तो उसको तो ऑब्वियसली नहीं पता ना, आप उसको जो पढ़ाएंगे वो सीखेगा। बट जो टीचर्स यहाँ पे 30-30, 40-40 साल से 20-20 साल से सेम चीज़ पढ़ा रही हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा। एंड मैं रियली होप करता हूँ कि वो टीचर्स इसको पॉजिटिवली लेंगी और इस शिफ्ट को एक्सेप्ट करेंगी। एक और जो बड़ा चेंज आया वो ये है कि बच्चे अपनी पसंद की लैंग्वेज अपनी मदर टंग के अंदर भी स्टडीज़ कर सकते हैं। 5th क्लास तक तो आप मदर टंग के अंदर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। तो होता क्या है कि इंग्लिश के टॉपिक पे मैं बाद में आऊँगा, बट हम पहले अपनी मदर टंग के अंदर पढ़ने के बेनिफिट मुझे क्या लगते हैं मैं बता देता हूँ। तो अगेन देखिए, यहाँ पे इंडिया में आप देखोगे सब लोग दो लैंग्वेजेस तो बोलते ही हैं मिनिमम, सब अपनी मदर टंग बोलते हैं और इंग्लिश टूटी फूटी बोलने कैसे फ्लुएंटली बोलने कैसे भी बोलने, बट पढ़ लेते हैं, समझ आ जाती है, कुछ ना कुछ चल जाता है। सो सब लोग दो लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं, बट मेजॉरिटी पीपल अगर आप देखेंगे, अगर वो अपनी मदर टंग में सीखेंगे, एंड अगर आपकी मदर टंग ही प्रमोट हो रही है उस स्टेट में जैसे आप जाते हैं तो मदर टंग ही चल रही होती है। अब अगर आप दिल्ली में हैं, आप इंग्लिश में सबसे बात कर रहे हैं तो ठीक है, हाँ लोगों को समझ आ जाएगी, बट आप बेटर कनेक्ट हिंदी में ही कर पाते हैं। अब मैं अगर पंजाब साइड जाता हूँ तो वहाँ पे लोग पंजाबी ही ज़्यादा बोल रहे होते हैं, मुझे पंजाबी समझ आ जाती है, मैं रिप्लाई उनको लेकिन हिंदी में ही करता हूँ, तो हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है। अगर मैंने खुद देखा है पर्सनली, अगर बिजनेस करना है तो आपको उधर की लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, सिर्फ इंडियंस के अंदर मैंने देखा है थोड़ा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और ये भी मैंने देखा है नई जनरेशन में ज़्यादा आ रहा है थोड़ा, कि उनको अपनी, मैंने देखा है बहुत पेरेंट्स अपने बच्चों से हिंदी में बात नहीं करते, या जैसे कि किसी और स्टेट में रह रहे होंगे तो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात नहीं करते। अब क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ तो मैं हिंदी का एग्जांपल बड़े अच्छे से दे सकता हूँ, क्योंकि आई कंटिन्यूसली सी ये जो हो रहा है। पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो सिर्फ इंग्लिश में बोलें अपने बच्चों से, तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है, बट आप अपनी मदर टंग को भूल जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बाद में जाके आपको शायद रियलाइज़ हो कि आपने क्या क्या लूज़ किया है, क्योंकि जॉब्स के अंदर तो ठीक है आपका चल जाएगा, इंग्लिश के साथ काम चल रहा है, अगर आपको अगेन बिजनेस करना है यू नीड टू कनेक्ट विद पीपल इन देयर लैंग्वेज। अब मैं ये क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ लिंग्विस्टिक पे, क्योंकि आई नो हिंदी, आई नो इंग्लिश ऑब्वियसली, उसके बाद मेरे पास अपने आर्सेनल के अंदर फ्रेंच एंड रशियन है, तो मैंने देखा जब मैं लैंग्वेजेस सीख रहा था तो जो भी नेटिव स्पीकर्स मुझसे बात करते थे दे कुड अंडरस्टैंड मेरी टूटी फूटी फ्रेंच रशियन एंड दे नेवर हैड अ प्रॉब्लम। बट यहाँ पे आप टूटी फूटी इंग्लिश बोल लो, सामने वाले को ऐसा हो जाता है कि भैया इसको अंग्रेजी नहीं आती। एंड मैंने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे पता है कि कितने मेरे अंकलों ने बोला था मुझे कि बेटा तुम इसको इंग्लिश में स्टार्ट करो, उनको मार्केट की जीरो नॉलेज है, उनको मतलब मार्केट है स्टॉक मार्केट नहीं कह रहा मैं, बट उनको इन जनरल जो मेरी मैं कहूँगा बिजनेस मार्केट हो गई यहाँ पे उसकी जीरो नॉलेज है, उस बेसिस पे इंग्लिश में मैं स्टार्ट कर तो लूँ बट मैं कनेक्ट तो इंडियंस के साथ करना चाह रहा हूँ ना। एंड आपको पता है स्टॉक मार्केट में तीन लैंग्वेजेस सबसे ज़्यादा चलती हैं राइट, क्योंकि तीन मैं कहूँगा तीन स्टेट से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती हैं। तो एक अपनी हिंदी बेल्ट की स्टेट हो गई जो मतलब उसके अंदर कोई स्टेट नहीं है बट हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन काफ़ी है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, महाराष्ट्र हो गया आपका मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन हो गई क्योंकि वहाँ आपकी फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया की वो, एंड थर्ड मैं कहूँगा गुजरात हो गई क्योंकि काफ़ी गुजराती से इन्वेस्ट करते हैं। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो ऐप्स हैं वो भी गुजराती लैंग्वेज में, एंड हम बिजनेस स्टडी करने जाते हैं तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह काफ़ी चीज़ें गुजरात में हैं। अब अगर मेरे को गुजराती या मराठी आती तो मैं डेफिनेटली उसको भी टारगेट कर रहा होता यहाँ पे एंड उसमें भी कंटेंट दे रहा होता, बट क्योंकि मुझे सिर्फ हिंदी आती है तो फिर मैं हिंदी के अंदर यहाँ पे आपके साथ कॉन्वर्जेशन करता हूँ, वार्तालाप करता हूँ। एंड हिंदी और इंग्लिश ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग अब बचपन से साथ में पढ़ते आ रहे हैं उन लैंग्वेजेस को तो वो मिक्स होने लगती है, एंड उसके अंदर ना मैं प्योर इंग्लिश बोलता हूँ ना मैं प्योर हिंदी बोलता हूँ। जो अभी प्योर इंग्लिश प्योर हिंदी भी बोला तो अगेन वो इंग्लिश हिंदी मिक्स है उसके अंदर, शुद्ध अंग्रेजी नहीं बोल सकता मैं ना शुद्ध हिंदी बोल सकता, वो नेचुरली होता ही नहीं है। तो नेचुरली कॉन्वर्जेशन आप करने लगते हो अपनी सारी लैंग्वेजेस में। व्हेन आई यूज्ड टू लर्न फ्रेंच रशियन बड़ा फ्लुएंटली मैं बोल रहा था जब कॉलेज डेज के बाद की बात है जब मैंने फ्रेंच एंड रशियन पिकअप करी थी बड़े ढंग से, तो आई यूज़ टू मिक्स अप सम वर्ड्स ऑफ रशियन इधर उधर हिंदी में बोलते बोलते निकल जाते थे, एंड दैट इज़ वेरी वेरी नेचुरल फॉर अ ब्रेन क्योंकि ब्रेन आपका सब चीज़ों को बड़ा ढंग से एक ऑर्गेनाइज वे में लेके चलता है। एंड अगर आप किसी चीज़ में कंफर्टेबल आप देखोगे उसको आप इंप्लीमेंट करने लगते हो रियल लाइफ में नेचुरली, तो वो नेचुरली मेरे वर्ड्स मिक्सअप होने लगते थे एंड आई कुड परफेक्टली अंडरस्टैंड वॉट आई वॉज सेइंग, बट सामने वालों को लगता था कि भैया क्या बोलिए बीच में तू, इसको तो बता क्या बोल रहा है। देन आई एकदम मेरे को क्लिक करता था कि हाँ यार ये मैं दूसरी लैंग्वेज बोल गया, एंड आई यूज टू ब्रिंग इट बैक टू माई हिंदी और इंग्लिश। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बचपन में अगर आप किसी बच्चे को लैंग्वेजेस सिखाना चाह रहे हैं तो बचपन से ही उन्हें मल्टीपल लैंग्वेजेस सिखाएं, और ऐसा नहीं है कि अगर आप उनको इंग्लिश सिखाएंगे खाली तो वो इंग्लिश में ही तभी बात करेंगे। इंग्लिश हिंदी मैं कह रहा हूँ जितनी लैंग्वेजेस आती हैं इट्स बेनिफिशियल, एंड प्रोग्रामिंग भी आपकी एक कोडिंग लैंग्वेज ही होती है, वो भी एक लैंग्वेज है, उसको आप सीखते हैं उसका एक स्ट्रक्चर होता है। बट जब आप कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं किसी से तो अगर आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं एंड आप बच्चों को मल्टीपल लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं एक यंग एज से तो ब्रेन बहुत जल्दी पिकअप कर लेता है, बहुत नेचुरली उनके पास आने लगती है। अब हमें हिंदी इंग्लिश बचपन से सिखाई गई है तो हमें कभी भी दिक्कत नहीं होती। लेट से कि मुझे कुछ आयुर्वेद के ऊपर पढ़ना है या मुझे कुछ योग के ऊपर पढ़ना है, मुझे कुछ एंशियंट टेक्स्ट पढ़ने हैं तो मुझे लगेगा कि मेरी हिंदी अच्छी होनी चाहिए, मुझे इवन भगवद गीता पढ़नी है लेट से, तो आपको भी पता है ट्रांसलेशन जब भी किसी लैंग्वेज से किसी लैंग्वेज में होती है तो मीनिंग काफ़ी लूज हो जाता है। तो अगर मुझे कुछ भी पढ़ना है जो कि एक्चुअली संस्कृत में लिखा गया था तो संस्कृत से पहले वो हिंदी में ट्रांसलेट हुआ तो हिंदी में मैंने पढ़ के उसको समझ लिया, हिंदी से फिर वो या संस्कृत से अगर वो इंग्लिश में जा रहा है तो फिर काफ़ी चीज़ें लूज हो जाती हैं ट्रांसलेशन में। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, तो संस्कृत में मेरे ख्याल से ये बोला गया था कि हिंदुइज्म में जो आपका हिंदू धर्म हो गया जिसको वैसे वे ऑफ लाइफ है बट हाँ ठीक है धर्म मानते हैं, तो अगेन एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें कोई रिलीजियस बात नहीं है, कि 33 कोट भगवान है 33 कोट, अब उसको जब ट्रांसलेट किया गया तो उन्होंने कर दिया 33 करोड़ भगवान है, जबकि 33 कोट का मेरे हिसाब से मीनिंग ये है कि 33 मेन गॉड्स हैं आपके, तो वो कुछ उस टाइप से कहना चाह रहे थे बट वो ट्रांसलेशन हुई तो उसके अंदर मीनिंग चेंज हो गया। तो अगर आप ओरिजिनली कुछ चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैंने रशियन सीखी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रशियन लैंग्वेज का बहुत यूज़ होता है, एंड काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रशियन में ही हैं, मेडिकल फील्ड हो गया चाहे साइंस का कोई भी फील्ड हो गया। एंड आप देख सकते हैं कि रशियन स्पेस प्रोग्राम वगैरह काफ़ी फेमस थे, काफ़ी बड़े थे, अभी भी आप देख सकते हैं कि रशिया फोरफ्रंट पे स्पेस एक्सप्लोरेशन में, एंड उनकी मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी हो गई, आर्मी का हो गया, तो सारी चीज़ें रशियन में ही लिखी आती हैं बाय डिफॉल्ट। अब वो मैं चाह रहा था कि मैं उन चीज़ों को रशियन में ही पढ़ूँ, काफ़ी लिटरेचर वगैरह रशियन के अंदर बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने रशियन सीखनी स्टार्ट करी। तो कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन जब भी होती है तो मीनिंग लूज होता है क्योंकि हर लैंग्वेज की अपनी एक ब्यूटी होती है। एंड अगेन ये मैं आपको कोई प्रमोट नहीं कर रहा कि आप फॉरेन लैंग्वेजेस सीखिए, इंडियन लैंग्वेजेस सीखिए, आपको जो लैंग्वेज पसंद आती है आप सीखें, बट कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि मैंने सिर्फ ये इंडियंस के अंदर स्पेशली हमारे यहाँ आसपास दिल्ली वगैरह में बहुत देखा है कि लोगों को ना एक अलग इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि तुम इंग्लिश में क्यों नहीं बात कर रहे, एंड दैट इज़ समथिंग आई रियली वॉन्ट टू चेंज, एंड जो मुझे लगता है कि एजुकेशन पॉलिसी के साथ चेंज होगा, बच्चों को जितनी लैंग्वेजेस आएंगी दे विल बी कम्फर्टेबल इन दोस। अब मेरा फ्रेंड जो यश सेठ है, ही इज़ अ CFA एंड वो जेवियर से पढ़ा हुआ है जयपुर में। जेवियर्स में क्लास 5 तक आपको हिंदी में ही पढ़ाते हैं। अब उसने CFA क्या हुआ है, सारे लेवल एक एक बार में निकाल लिए, कहीं पे उसकी एजुकेशन में कोई कमी नहीं है। इवन मैं कहूँगा उसकी हिंदी बहुत अच्छी है। तो हम जैसे ब्रोकर से जब भी डील कर रहे होते हैं किसी से, तो वो नंबर्स आपको हिंदी में ही बोल रहे होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी ट्रेडिंग चल रही होती है। यहाँ पर मैंने देखा बहुत लोगों को हिंदी में टाइम बोलना नहीं आता, हिंदी में नंबर्स नहीं आते। तो कहीं ना कहीं आप बहुत एक एडवांटेज लूज़ कर देते हैं हर इंडस्ट्री के अंदर। तो जितनी लैंग्वेजेस आएँ, जितना आप उनमें फ्लुएंट हो उतना अच्छा है। मैं यहाँ पे अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा भैया ये तो बस हिंदी को प्रमोट कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर से पढ़ा हूँ एंड मैंने बड़ी कोशिश करी कि कन्नड़ा आ जाए, बट मेरी क्लास में आई थिंक 2 या 3 कन्नड़ी गर्ल्स थे एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू लर्न कन्नड़ा। क्योंकि बैंगलोर तो चलिए फिर भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बट आप जैसे मान लीजिए मैसूर गए, अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती है आप लोगों से बहुत बेटर इंटरेक्ट कर पाते हैं। मैंने थोड़ी तेलुगु भी सीखने की कोशिश करी थी, उसके लिए मैंने अपनी लाइन भी फिक्स कर ली थी, नैनू तेलुगु नेर्चुकुंटू नानू, दैट मीन्स आई एम लर्निंग तेलुगु। बट उसके आगे मैं सीख ही नहीं पाया, क्योंकि दोस्त भी अपना वही होता है कि कॉलेज डेज हैं, अपना सेटल होने में टाइम लग जाता है, नई सिटी में आए हैं, तो लैंग्वेजेस पे इतना फोकस नहीं हो पाया। बट अगेन अगर आप यंग एज में लिंग्विस्टिक्स पे फोकस करते हैं, लैंग्वेजेस पे फोकस करते हैं, इट्स गोइंग टू बी अ बिग बिग पॉजिटिव। एंड एक एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो शिफ्ट आ रहा है, आई थिंक उसके वजह से लोग बिजनेसेस स्टार्ट करना शुरू करेंगे, उनके स्किल सेट बेटर डेवलप होंगे, अगर वो जॉब्स में भी जाना चाहते हैं तो वो जॉब्स बहुत बेटर तरीके से कर पाएंगे। आप मानिए आपको क्लास 6 से इंटर्नशिप अलाउड हो रही है, यानी कि अगर मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ, आई यूज़ टू पेंट वेल, मतलब ऑयल पेंटिंग आई यूज़ टू डू गुड क्लास 6 7 में, उसके बाद ऑब्वियसली एजुकेशन पे फोकस चला गया। एंड मैं कहीं पे भी नहीं चाहता कि ये आगे वाली जनरेशन्स के साथ हो, क्योंकि मेरे टाइम पे CC सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जो बिल्कुल बेकार ही निकला, अल्टीमेटली उसको स्क्रैप ऑफ ही कर दिया, मतलब उसके अंदर कुछ शर्माने वाली बात नहीं है बोलने में कि बेकार था। बहुत सब्जेक्टिव मार्किंग हो गई थी, कुछ स्कूल्स के अंदर बहुत बेटर रिजल्ट आते थे, हमारे स्कूल के अंदर इतना नहीं आता था, आर स्कूल वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। तो मैं क्लास में रैंक होल्डर था, मेरे को ध्यान है क्लास 10 में आई गॉट माई फर्स्ट रैंक, मेरी 9 CGPA थी। मेरे को ट्यूशन में सर कह रहे बेटा तेरी 10 कैसे नहीं है, मैं सर देते ही नहीं है नंबर। तो बात यह है कि बहुत सब्जेक्टिव मार्किंग हो जाती है एंड मेरे को कभी भी मार्क्स से फ़र्क नहीं पड़ा, एंड आई थिंक दैट इज़ वाई आई हैव स्कोर्ड वेल। एंड अकेडमिक्स मेरा क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, तो फिर आई प्लेड ऑन माई स्ट्रेंथ, राइट, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो फिर मेरे को पता था कि आई कैन एक्सेल इन दीज थिंग्स। एंड मैंने अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स जितना हो सकता था, लाइक मेरे को पता था मुझे कॉमर्स कहीं ना कहीं ज़्यादा यूज़ आएगी साइंसेस, आई टुक कॉमर्स, बट मुझे एस्ट्रोफिजिक्स पसंद थी, तो आई हैव डन माई एजुकेशन इन दैट। बट हाँ, क्या मैं उसको और बेटर तरीके से पढ़ना चाहता था? डेफिनेटली पढ़ना चाहता था, एंड मैं चाहता था कि मेरे स्कूल में ही मैं उसको पढ़ूँ एंड एक बेस, एक फाउंडेशन बिल्ट हो। आज मेरा फिजिक्स में कोई फाउंडेशन नहीं है, बट आई कैन कनेक्ट विद एस्ट्रोफिजिक्स। एंड एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ने के बाद यू रियलाइज कि हाउ क्लोज इट इज़ टू स्पिरिचुअलिटी, स्पेशली क्वांटम फिजिक्स, एंड आप देखोगे कि कितना सब कुछ लिंक्ड है। नाउ मैं अगर कुछ स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे कुछ पढ़ना चाहूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई वांट टू रीड अष्टावक्र गीता, अब वो लिखी संस्कृत में, मुझे संस्कृत आती ही नहीं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। आप अगेन ट्रांसलेटेड वर्क पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं मीनिंग लूज हो जाता है, मीनिंग लूज होते ही आप ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट को लूज कर देते हैं। तो अगेन यहाँ पे मैं कोई लैंग्वेज प्रमोट नहीं कर रहा हूँ गाइस, बट मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कुछ टेक्स्ट उर्दू के अंदर लिखे हैं, या आपकी जैसे शायरी बहुत उर्दू में होती है, हिंदी में होती है, कविताएँ होती हैं, अगर आप ओरिजिनल लैंग्वेज में उन्हें पढ़ेंगे उनका मज़ा ही अलग होता है, उनका आपकी लाइफ में एक इम्प्लीमेंटेशन अलग आ जाता है। मुझे ध्यान है मैंने रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता याद करी थी हिंदी में, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो, मतलब ये कुछ कुछ लाइन्स, और मतलब मेरे को पोएट्री पूरी याद है बट यहाँ पे सुनाऊंगा क्या उसे, तो क्षमा और दया कविता का नाम था। एंड आप देख सकते हैं उस कविता के कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मुझे लगे हैं, कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे चंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी धधक अधीर पौरुष की आग राम के शर से। तो मतलब ये सारी जैसे लाइनें मुझे याद हैं या मुझे समझ आता है इसका मीनिंग क्या है, इसको मैं लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाता हूँ, कहीं ना कहीं कामनेस आती है। और यू लिव फॉर दीज थिंग्स, राइट, मतलब ठीक है पैसा कमा लिया सब कुछ हो गया, बट कहीं ना कहीं एक एंटरटेनमेंट अलग अलग टाइप का होता है। अब किसी को मूवीज़ देख के पसंद आता है, मूवी से आप बहुत चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि यश जो मेरा फ्रेंड है, ही इज़ अ बिग फैन ऑफ कुंग फू पांडा, एंड कुंग फू पांडा में आपको सबको अगर वो सीन ध्यान हो, आपने मूवी देखी हो तो, नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा, एनिमेटेड मूवी है, प्लीज़ देखिए। जब पो को अल्टीमेटली वो दिखता है और वो अपना स्क्रोल खोलता है, स्क्रोल में उसको अपना ही फेस दिखता है, दैट इज सच अ बिग बिग थिंग टू से ना, कि आपके ही हाथ में है सब कुछ, आप ही सब कुछ हो, एंड उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं लाइफ में, फिर उसके ऊपर आपका बेसिकली हो जाता है कि आप कैसे लाइफ को अपना लिव कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि बिजनेसेस किस किस जगह पे आ रहे हैं, किस किस स्टेट पे आ रहे हैं, अगर आप उधर की स्टेट्स की लैंग्वेजेस पे फोकस करें तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो अगर आप फोकस होना स्टार्ट होगा कम से कम उस स्टेट के अंदर, तो उन लोगों को पता होगा कि उस स्टेट की हिस्ट्री क्या, एंड आप देख सकते हैं कि इंडिया कितने अलग अलग कल्चर और कितने अलग अलग लैंग्वेजेस, कितने अलग अलग डाइवर्सिटी के साथ मिलके बना हुआ है। इट्स अ वेरी वेरी डाइवर्स कंट्री, तो उस डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं जिंदा रखने में ही हमारी यूनिटी और स्ट्रेंथ रहेगी। अगेन इसके अंदर हमें ये नहीं करना कि तू हिंदी बोलता है मैं मराठी बोलता हूँ, ये वो फालतू बकवास नहीं करनी, कोई और कर रहा है उसको भी रोकना है कि ये फालतू बकवास नहीं करनी। हर लैंग्वेज की अपनी ब्यूटी है। अब मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर मेरे को गुजराती मराठी आती मैं उसमें भी कंटेंट बना रहा होता, डेफिनेटली बना रहा होता, क्योंकि मेरे को एक तो ए सबसे पहला अगर मैं सेल्फिश बेनिफिट उसके अंदर देखूं तो मुझे बिजनेस मिल रहा है, बी मैं कहूंगा कि मैं लोगों से बेटर बहुत कनेक्ट कर पाऊंगा उन लैंग्वेजेस की वजह से, एंड वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट क्योंकि लोगों को होता है कि तू तो अपने काम के लिए कर रहा है, तो आई हैव टोल्ड यू कि हाँ मुझे बिजनेस उससे बहुत बेटर मिलेगा। तो गाइस कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका क्रक्स समझें, उसका समझें कि बेसिकली हाँ ये किस रीज़न से इंपॉर्टेंट है, एंड उस बेसिस पे ही आप अपने डिसीजन लीजिए, ओपिनियन बनाइए। मुझे एक्चुअली लगता है कि दिस वॉज मच अवेटेड। अब कम से कम आपका 9th से 12th के अंदर भी एक सेमेस्टर सिस्टम आएगा, कॉलेजेस के अंदर आपको क्रेडिट्स ढंग से मिलने लगेंगे, तो आप जितनी पढ़ाई करते हैं उस बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन की डिग्री, रिसर्च की डिग्री ये सब मिलेंगी, विच इज़ एक्सीलेंट फॉर एनी वन हु वॉन्ट्स टू स्टडी। एंड मुझे एक चीज़ और लगती है गाइस, कि जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसके बेसिस पे किसी को अगर किसी फील्ड के अंदर एक्सेल करना है उसको उसमें ही पढ़ना है, उसको पेंटिंग सीखनी है, उसको मैं कहूँगा कन्फेक्शनरी सीखनी है, उसको बेकिंग करनी है, उसको भैया शेफ बनना है, उसको नहीं सीखना साइंस में क्या हो रहा है, उसको मैथ्स से मतलब नहीं है, मुझे है तो मेरे को सिखाओ, उसको नहीं है उसको मत सिखाओ। स्पेशलाइजेशन करो लोगों की, उसके बेसिस पे ही कंट्री बढ़ेगी, उसके बेसिस पे ही लोग आगे निकलेंगे। आज सब सेम चीज़ें पढ़ के आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन किसी को कुछ नहीं पता होता, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, आबादी पहले से ही बहुत ज़्यादा है, जॉब्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि रोबोट सबको रिप्लेस कर रहे हैं, लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है आपको, आप अकेले बहुत काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप स्पेशलाइजेशन पे फोकस करिए, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पॉजिटिवली लीजिए, फाइनली कुछ चेंज आया है, एंड आई थिंक थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में शायद टीचर्स को दिक्कत आए, बट टीचर्स रियली नीड टू स्टेप अप, नाउ इज़ द टाइम टू शो। आज आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स हमारे, आर्मी मैन, पुलिस मैन फ्रंट लाइन पर जो खड़े हैं, दे हैव रियली स्टेप्ड अप एंड दे आर डूइंग देयर जॉब्स। अब मुझे लगता है कि अगले 1 से 10 साल, 5 साल टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। टीचर्स रियली नीड टू स्टेप अप, इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसीज एट देयर पोटेंशियल, एट देयर बेस्ट लेवल, एंड एक बार वो कर लेंगे बच्चों का एक बैच क्लियर हो जाएगा, 10-12 साल हो जाएंगे, यू विल सी अ बिग चेंज इन दिस कंट्री। अगेन इम्प्लीमेंटेशन इज द की ओवर हियर, एंड प्लीज़ आई रिपीट, इसके अंदर कुछ हेटरेट ढूंढने की कोशिश मत करना, लैंग्वेजेस के बेसिस पे झगड़ा करने की कोशिश मत करना, सारे स्टेट्स में अपनी मदर टंग को प्रमोट किया जाएगा, उसके बेसिस पे ज़बरदस्ती सेग्रीगेट करने की कोशिश मत करना, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, एंड आई रियली होप लोगों का एक इंटेलेक्ट लेवल बढ़े, दे बिकम बेटर इक्विप्ड टू कनेक्ट विद अदर ह्यूमन बींग्स एज वेल, क्योंकि आपको जब एक लैंग्वेज आती है तो आप बेटर कनेक्ट कर पाते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये सब होगा तो मुझे लगता है एज अ कंट्री वी विल ग्रो वे अहेड। एंड प्लीज़ एक जो मेरी रिक्वेस्ट है काफ़ी लोगों से, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स छोड़ दें, अगर आपको है कि सामने वाला इंग्लिश नहीं बोल रहा है, मुझे नहीं आती, इंग्लिश आनी ज़रूरी है, डेफिनेटली इंग्लिश हैज़ गिवन अस अ बिग एज, बट इंग्लिश आनी ही सब कुछ नहीं है। तो प्लीज़ फोकस करिए, थोड़ा एजुकेशन पॉलिसी देखिए कि किस हिसाब से आई है, आप इसको ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं, मुझे पर्सनली पसंद आई है, मैं पर्सनली कहूँ तो आई वुड हैव लव टू स्टडी अंडर दिस एजुकेशन पॉलिसी, जहाँ पे मैं अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स चुन पाता, बट ऑब्वियसली अभी हम क्योंकि 3-dimensional beings हैं तो वी कैनॉट यू नो मैनिपुलेट टाइम, अगेन क्वांटम फिजिक्स की कोई बात है, अगर आप हायर डायमेंशंस में हैं तो आप टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एंड टाइम आपके लिए बाकी डायमेंशन जैसा हो जाता है, तो अगेन वी विल स्किप दिस थिंग। अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लीजिए, उसको अपना स्किल सेट इम्प्रूव करने की लिए बनाइए, उस पर फोकस आपका यही होना चाहिए कि लाइफ एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एंड उसमें आपको लर्निंग्स करनी है, अपनी इंप्रूवमेंट करनी है, तो उस पर ही फोकस करें। गाइस थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है मुझे पता है, बट आई रियली वॉन्टेड टू स्पीक ऑन दिस मैटर, एंड आई होप कि आप मेरे कुछ ना कुछ पॉइंट्स एग्री करते होंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट समझ आते होंगे, एंड प्लीज़ यू नो शेयर दिस वीडियो। मैं आपको कभी भी नहीं कहता कि लाइक करिए, शेयर करिए, बट आप प्लीज़ इसको थोड़ा शेयर करिए वीडियो को, एंड अगर आप शेयर करेंगे, हो सकता है काफ़ी लोग जिनका एक मेंटल ब्लॉक है लैंग्वेजेस को लेकर स्पेशली, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स में सबसे बड़ा चेंज आया इस पॉलिसी में, वो मे बी कहीं ना कहीं ओपन हो जाए एंड दे स्टार्ट अप्रिशिएटिंग देयर लैंग्वेजेस एज वेल. गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन. आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.